परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और उनका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर हमें पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं और अपने आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम अपने जीवन में नई आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम दूर में रह करके भी एक साथ आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके जीवित वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि प्रत्येक श्रोता भाई बहन जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, पारिवारिक समस्या में उलझे हुए हैं या आर्थिक दबाव में और तनाव में हैं। आप उन सब की सहायता करें, अपनी शांति उन्हें प्रदान करें, उन्हें आत्मिक रीति से और बलवंत करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि कष्ट दो प्रकार के होते हैं, सहकारी और मध्यस्थता के। मसीह ने हमारे लिए जो कष्ट उठाए वे मध्यस्थता के कष्ट थे और मसीह के कष्टों को भी दो वर्गों में रखा जा सकता है जिनमें सुस्पष्ट अंतर है। पहला, मसीह के वे कष्ट जो उसने उठाए परंतु हम उसमें सहभागी नहीं हो सकते हैं। उसने मानव रूप में कष्ट उठाया, उसने मानवीय कष्ट सहे, उसने बेतलहम में जन्म लेकर 2010 वर्ष पूर्व मनुष्य के कष्टों का अनुभव अपनी देह में किया। जन्म के समय क्या वह अन्य शिशुओं के समान रोया था? मैं इस विषय पर सोचता हूं और मानता हूं कि वह अवश्य ही रोया था। उसकी देह हमारे समान ही भंगुर थी, उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, उसे अकेलापन भी महसूस होता था, उसे दुख, दर्द और पीड़ा भी होती थी। वह थकता था इसलिए नाव में सो गया था। ये मनुष्य के कष्ट हैं जिनका अनुभव हम सबको होता है। गलातियों के पत्र 6:5 में पौलुस लिखता है, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। कुछ ऐसे कष्ट हैं जो केवल हम ही व्यक्तिगत रूप से उठा सकते हैं। हम अकेले जन्मे हैं, हमारा प्रभु यीशु भी अकेला जन्मा था। हम कष्ट का अनुभव भी अकेले ही करते हैं। जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल हमें ही सहन करना है और अकेले ही करना है। एक ऐसा दुख भी है जो हमारे साथ कोई नहीं बांट सकता। यदि हम बीमार हो जाएं तो तो हमारा स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित की गई है उसे ही मृत्यु मिलेगी, न कि दूसरे व्यक्ति को। जिसका कष्ट है उसे ही उठाना पड़ेगा। एक बार ग्रीष्मकाल के समय हम रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहे थे और मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा था, वह बीमार हो गया। उसका बुखार 104 था। हमने मार्ग में एक अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। उस समय यदि मुझे उसका स्थान लेने के लिए कुछ भी करना पड़ता तो मैं करता। मैं सहर्ष उसका बुखार अपनी देह में ले लेता, परंतु यह संभव नहीं था। हम इन बातों में सहभागी नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा समय आता है जब हमें घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के चलना पड़ता है। हम मरेंगे भी अकेले ही। यही कारण है कि प्रभु यीशु को जानना है कि वह हमारे साथ है, जबकि मनुष्य मृत्यु में हमारे साथ नहीं चल सकता। एक अति महान बात है कि हमें अकेला ही रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने मानवीय कष्ट उठाए। ऐसे कष्ट हमारे साथ कोई नहीं बांट सकता है। दूसरा कष्ट जो वह किसी के साथ नहीं बांट पाया था वह था परमेश्वर के पुत्र का कष्ट। परंतु उसने फिर भी मनुष्यों से अपनी पहचान बनाई। नाश्वर मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो उसके समान कष्ट उठा पाता। वह अपने भाइयों के सदृश हुआ और स्वयं कष्ट उठाया, परंतु उसने मनुष्यों में होकर के भी परमेश्वर के पुत्र होने के कारण कष्ट उठाया। इस प्रकार के कष्ट का वर्णन भजन संहिता 69 में है, जिसके 11 पद से 12 पद में लिखा है कि वह नासरत में शराबियों का गीत बन गया था। वह टाट का वस्त्र पहने था। ओह, वह परमेश्वर का पुत्र होने के कारण कैसा कष्ट उठा रहा था। वह बंदी बनाया गया। महायाजक के सुरक्षा कर्मी उसका ठट्ठा और मजाक कर रहे थे। उसे चोगा पहनाया गया। उसके सिर पर कांटों का ताज अर्थात मुकुट रखा गया। उन्होंने उसके साथ गर्म हाथ का खेल खेला। इस खेल के बारे में कहा जाता है कि इस खेल में आंखें बांधकर बारी बारी से मारते थे। एक सैनिक नहीं मारता था। तब आंखों से पट्टी हटाकर या खोलकर पूछा जाता था कि वह कौन सा सैनिक है जिसने उसे नहीं मारा। यदि वह सही नाम भी बता देता तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। वे फिर से उसकी आंखों पर पट्टी बांधते और नए सिरे से खेल आरंभ करते। उन्होंने उसे मारते मारते ऐसा कर दिया कि उसका चेहरा मनुष्य का सा नहीं दिखता था। क्रूस पर चढ़ाने से पूर्व उन्होंने उसके चेहरे का रूप बदल दिया था। उसने ऐसे कष्ट उठाए जो मनुष्य ने कभी नहीं उठाए थे, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। फिर उसने संसार के पापों के लिए बलि बनकर कष्ट उठाया। वह परमेश्वर का मेमना था जो जगत के पापों को उठा ले गया। हम में से कोई भी उन कष्टों में सहभागी नहीं हो सकता है। हम उसकी मृत्यु को समझ सकते हैं कि वह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के बदले में मरा। हम यह भी मानते हैं कि वह हमारे स्थान पर मरा, परंतु हम उसकी मृत्यु में प्रवेश नहीं कर सकते। वह अकेला ही क्रूस पर चढ़ा। वह परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया था, मनुष्य द्वारा भी त्यागा जा चुका था। उसका लहू शहीद होने का नहीं, बलि का लहू था। क्रूस पर 3 घंटे मनुष्य ने बुरे से बुरे व्यवहार उसके साथ किया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मनुष्य ने यथासंभव दुष्टता की सीमा पार की। 12 से 3 बजे तक अंधकार छाया हुआ था। इस समय परमेश्वर अपनी ओर से अच्छा कर रहा था। क्रूस वह वेदी बन गया जिस पर जगत के पाप उठाने वाला मेमना बलि किया गया है, परमेश्वर का मेमना। पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जी हाँ, यह ऐसा कष्ट था जिसे आप और मैं उठा नहीं सकते थे। वह किसी के साथ उसे बांट नहीं सकता था और उसे अकेला ही उठाना था। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी ओर मसीह ने ऐसे कष्ट भी उठाए जिन्हें हम उसके साथ बांट सकते हैं। ये वे कष्ट हैं जिन्हें पौलुस पद 24 में व्यक्त करता है। धार्मिकता के निमित्त कष्ट उठाना। नासरत के आराधनालय में यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 40 पद में, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। उसने धार्मिकता के कारण कष्ट उठाए और हमें कहा गया है कि हमें भी ऐसे ही कष्ट उठाने होंगे। पत्रस कहता है, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस युवा तीमुथियुस से कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, यदि आप सत्य के लिए खड़े हैं, तो आपको अनदेखा किया जाएगा। परमेश्वर की संतान सांसारिक प्रतिष्ठा के निमित्त अनदेखी की जाती है। परमेश्वर की संतान को मनुष्य कोसकर मान देता है। खिलाड़ियों की प्रशंसा होती है, हास्य कलाकारों को सराहा जाता है, राजनेताओं को मान प्रदान किया जाता है। यदि आप संसार में सत्य के लिए खड़े होंगे तो आप धर्म के कारण सताए जाएंगे। परमेश्वर की संतान को प्रशंसा प्राप्त नहीं होगी। पौलुस इस सत्य से परिचित था, अतः उसने रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परमेश्वर का नाम लेने वालों के भाग में यही सब बातें हैं। मेरे मित्रों, सुसमाचार सुनाने के निमित्त मसीह की पहचान के अनुपात में कष्ट उठाना। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 17 पद में यूहन्ना लिखता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रभु यीशु ने अति स्पष्ट कह दिया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यदि आप संसार के नहीं हैं, तो संसार आपसे बैर रखेगा। संसार में एक मसीही जन की ख्याति मसीह के साथ उसके नाम के विपरीत अनुपात में है। यदि आप संसार में जनमान्य हैं, तो मसीह के समक्ष मान्य नहीं है। मसीह के समक्ष स्थान पाने के कारण आप संसार में प्रशंसा के पात्र नहीं होंगे। परमेश्वर की संतान को अपना अधिकृत स्थान प्राप्त करके मसीह यीशु की पहचान में बढ़ना है। जब हम मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं, तब मसीह यीशु भी हमारे साथ कष्ट उठाता है, कलीसिया के साथ कष्ट उठाता है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु ने पौलुस से कहा था, शाउल शाउल तू मुझे क्यों सताता है। यह सुनकर वह युवा फरीसी आश्चर्य में पड़ गया। वह तो सोच रहा था कि वह मसीह के अनुयायियों को सता रहा था, परंतु वह यह जानकर चकित रह गया कि वह प्रभु यीशु को सता रहा है। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पत्रस यही कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। एक बात तो निश्चित है, यदि आज सुसमाचार का विस्तार होना है तो किसी को भी कष्ट उठाना होगा। स्वर्गीय डॉक्टर जॉर्ज गिल ने कहा कि जब एक बच्चा संसार में जन्म लेता है तो सभी को पीड़ा उठाना होता है। आज नया जन्म कम होने का कारण है कि विश्वासी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार नहीं है। कष्ट उठाना सबकी पसंद नहीं है, परंतु पौलुस इस पद में यही कहता है, हम सब नवजागृति देखना चाहते हैं, हम प्रफुल्लित हो गवाही देने और परमेश्वर के लिए जीने की बात करते हैं। परंतु मेरे मित्रों, यदि सुसमाचार को बढ़ाना है और मनुष्यों का उद्धार होना है तो किसी को तो कीमत चुकाना होगा। आप परमेश्वर के वचन को फैलाने में कितनी कीमत चुका रहे हैं, मैं आपके बारे नहीं जानता। क्या आप सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं, या आप सिर्फ दूसरों को कष्ट उठाते हुए देखना चाहते हैं? हम कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ध्यान दीजिए, प्रबंध अर्थात भंडारीपन। परमेश्वर इस संसार के साथ अलग अलग भंडारीपन का व्यवहार करता है, परंतु वे सब मसीह में मुक्ति पर आधारित हैं। इस संसार में यीशु के जन्म से पूर्व वे विश्वास रखकर एक मेमना बलि चढ़ाते थे और मसीह उन्हें उद्धार प्रदान करता था, क्योंकि वह एक दिन अपनी जान देगा। पुराने नियम में यह परमेश्वर का प्रबंध था। हम आज मेमना बलि नहीं करते क्योंकि मसीह आ चुका है, जो एक ऐतिहासिक तथ्य है। हमें जो करना है वह बस यह है कि उसमें विश्वास करना है। मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। पौलुस कुलुसी के अन्य जाति विश्वासियों को लिख रहा था कि वे इस नए प्रबंध के भाग हैं, वे कलीसिया के सदस्य हैं। परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करो, वह एक ऐसी बात है जो पुराने नियम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, परंतु अब परमेश्वर ने कहा कि सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाया जाए। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ध्यान दीजिए, भेद वह बात है जो पुराने नियम में प्रकट नहीं की गई थी, परंतु अब प्रकट की गई है। हमने इफिसियों की पत्री के अध्ययन में देखा था कि भेद यह नहीं था कि अन्य जातियां उद्धार पाएंगी, क्योंकि यह तो पुराने नियम में कहा जा चुका था। भेद तो यह था कि परमेश्वर इसराइल को अन्य जातियों के साथ एक ही नींव पर आधारित करेगा। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सबके सब भटक गए हैं। अब परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों को, सब जातियों को लेकर एक नई देह में अर्थात कलीसिया में रख रहा है। यह पुराने नियम में नहीं था, परंतु अब प्रकट है, पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इस भेद को जानने वाला पौलुस अकेला नहीं था, यह भेद उस युग में परमेश्वर के पवित्र जनों पर प्रकट था। हम कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मेरे मित्रों, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हम मसीह में हैं। जिस पल आप मसीह यीशु में विश्वास लाते हैं या करते हैं, उसी पल पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा देकर विश्वासियों की देह में जोड़ देता है। आप और मैं एक नई स्थिति कलीसिया में लाए गए हैं, और कलीसिया के पास एक महिमामय भविष्य है। कुलुसियों की पत्री एक अध्याय उसके 28 पद में आगे लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। जिसका प्रचार करके, सुसमाचार वह नहीं जो हम प्रचार करते हैं, परंतु जिसका हम प्रचार करते हैं मसीह के बिना किसी ने कभी प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु ही सुसमाचार है, वह अनंत जीवन है। पहला योना के पत्री एक अध्याय उसके 1-2 में लिखा है कि वह हमें अनंत जीवन का बोध करवाएगा और उसने स्वयं अनंत जीवन देखा है। योना ने किसको देखा था? उसने प्रभु यीशु को देखा था। मेरे मित्रों, आज या तो आपके पास वह है या नहीं है। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात उसने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान में जो किया और वह जो भविष्य में हमारे लिए करेगा। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। मेरे विचार में यहां प्रचारकों के लिए 2 आज्ञाएं हैं जिन्हें हमें करना आवश्यक है। हमें सुसमाचार प्रचार इसलिए करना है कि पापियों को प्रभु यीशु में लाएं और उन्हें आने वाले क्रोध से, यानी कि भयानक नरक की मृत्यु से बचाएं। हमें प्रत्येक मनुष्य को सारे ज्ञान से सिखाना है। दूसरे शब्दों में हमें स्त्री पुरुषों के निर्माण की खोज करना है कि वे अनुग्रह में विकसित होकर मसीह की देह के विश्वास योग्य सदस्य बने। उन्हें स्थानीय कलीसिया में प्रभु यीशु की सेवा में प्रोत्साहित करना है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में मेरा बाइबल अध्ययन स्थानीय कलीसियाओं की सहायता कर रहा है और यही कारण है कि अनेक पास्टर मुझे सहयोग देते हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं सेवा कार्य पूरा नहीं कर रहा हूं। आगे लिखा है कि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध का वास्तविक अर्थ है परिपूर्ण, परिपक्व। परमेश्वर के वचन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के वचन में सिद्ध बनता जाए। कुलुसियों की पत्री 1 उसके 29 में लिखा है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। ध्यान दीजिए, परिश्रम। परिश्रम अर्थात पीड़ा उठाना। पौलुस हमें अपनी व्यक्तिगत गवाही सुनाता है, मैं यही परिश्रम करता हूं। उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। ओह, आज यह प्रत्येक विश्वासी की मनोकामना हो, हर एक मसीही सेवक की लालसा हो कि वह हम में सामर्थ से 2 बातों के निमित्त काम करे। सुसमाचार प्रचार की मनुष्य उद्धार पाए और फिर उन्हें विश्वास में दृढ़ करे। ये 2 बातें हैं जो कलीसिया को करना आवश्यक है। लेकिन दुख की बात कि आज कलीसिया अपने में व्यस्त है और सुसमाचार प्रचार कार्य को करने में बहुत पीछे है, न कि दूसरों को नरक से बचाने की कोई कोशिश कर रही है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार की प्राप्ति है। आज आप अपने जीवन के बारे सोच करके देखें कि आज आप कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने आप में प्रभु की निकटता में बढ़ रहे हैं या नहीं? मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है।